I think what flavor of these new Dunkin' Coconut Refreshers you get says a lot about you.
Really? What's it say about me?
Well, you got the refreshing golden peach because you're vibrant, fun, and positive.
Oh, what about me?
The bold purple pomegranate means you're vibrant, fun, and positive.
I take it I got this delicious pink strawberry because I'm vibrant, fun, and positive.
Yeah, it's a simple system, really.
Share the shine. Enjoy a medium Dunkin' Coconut Refresher for $3. Order ahead plus earn rewards. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer excludes classic Dunkin' Refreshers.
Studio Logic Box Originals. किस्सा कहानी में मैं निधि बासु आपके लिए लेकर आई हूं कुछ दिल छूने वाली कहानियां। आज सुनिए डॉक्टर अचला नागर द्वारा लिखी कहानी कलर थेरेपी। कहने वाले कहते हैं गोरे रंग पर हल्के गहरे सभी रंग फबते हैं, जबकि सांवले श्याम वर्ण पर बस हल्के ही खिलकर आते हैं। लेकिन पहली पहली बार बसु को देखते ही ये धारणा बदलने को जी चाहा था। गहरे सांवले रंग पर दिप दिप करती बड़ी सी लौंग, काले लाल चौखानों की हैंडलूम की धोती, उसी से मिलता जुलता ब्लाउज और कंधे पर टंगा पीला खादी का झोला देखता ही रह गया था मैं। यूं जहांगीर आर्ट गैलरी जाना तो उन दिनों अक्सर होता था, मगर पेंटिंग्स वेंटिंग्स में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस आता और इधर उधर अच्छे चेहरों को ताकते झांकते भीतर बने छोटे से खुशनुमा रेस्तरां सोमवार में बैठ जाता, जहां कुछ बुद्धिजीवी किस्म के लोग विदेशी साहित्य, दर्शन, कविता, फिल्म पर उलझे होते तो कुछ कड़के भी जो एक प्याली चाय कॉफी के आमंत्रण के लिए एक अदद कृपा दृष्टि को तलाशते फिरते, और हाँ इक्का दुक्का युगल भी जो मुंह से कम चम्मचों और प्याली की आवाजों में ज्यादा बोलते हैं। छिपाऊंगा नहीं, बसु से पहले और बसु के साथ मैंने भी ये भाषा काफी बोली है। बहरहाल एक रोज उस तरफ से गुजरते हुए कोस कोस लंबे मुक्त केशों ने जैसे आंखें ही बांध ली हों, यूं भी लंबे बाल आजकल कम ही नजर आते हैं, शायद इसलिए मैं उन मादक केश पाशों से बेखबर खिंचा चला जा रहा था, तभी एक दिन जोरदार धमाका हुआ। स्ट्यूपिड, मेरा ध्यान गया, देखा मेरे और सुकेशी के बीच कुछ आ गया था, उसी से भिड़ंत हो गई थी। वो अपना माथा मल रही थी, मैं अपना। एक कलकल ध्वनि ने मेरा ध्यान बटाया। वो सुकेशी यानी बसु ही थी जो हमारे एक्सीडेंट को देखकर अपनी हंसी रोक पाने में असमर्थ थी। हाल में हुई घटना भूलकर मैं उसे ही देखता रह गया। गहरे सांवले रंग में मिलकर जैसे सारे चेहरे पर सिंदूर फैल गया हो। हंसते हुए गालों में पड़ रहे गड्ढे मुझे अपनी मिट्टी की गुल्लक याद दिला रहे थे, जिसमें चवन्नी मजे से सरक जाया करती थी। मेरे हाथ कसमसाने लगे। अगर इस वक्त चवन्नी हाथ में होती तो यूं सरका देता। मुझे हंसी आ गई। मुझे हंसते देख वो कॉन्शियस हो गई और गुल्लकें भी बंद हो गईं। उसके बाद किस तरह मेरी उसकी मुलाकातें सोमवार की हद से निकलकर खंडाला तक पहुंच गईं, वो लंबी बातें हैं। क्या क्या बताया जाए और क्या नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ जैसा ही था, जबकि सुनने वालों के लिए गुलजार की फिल्मों से चुराए संवेदनशील दृश्यों से ज्यादा नहीं। फिर भी वो पल जिसने मेरे और बसु के बीच की हवा को नकार कर हमें झटके से एक कर दिया था, मेरी सांसों के साथ जैसा का तैसा चिपका पड़ा है। हमें कहीं इकट्ठे जाना था। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो देखा फैले हुए कागज किताबों के ढेर में वो अस्त व्यस्त सी बैठी है। मुझे देखते ही परेशान हो उठी। ओह सॉरी यार, हम तो भूल ही गए थे, बैठो। जवाब में मैंने घड़ी देखी, वो मुस्कुराई। कोने में बिछे गद्दे पर मैं पसर गया। इस बीच बाथरूम में हाथ मुंह धोते हुए, कपड़े पहनते हुए, शीशे के आगे अपने को संवारते हुए वो कुछ ना कुछ बोलती ही रही। पता है मैं क्या कर रही थी? 4 साल पहले जिन दिनों में जीने का चाव पूरी तौर पर गंवा चुकी थी, अचानक एक ज्योतिषी से टकरा गई। शौकिया ज्योतिषी से, उसने कुछ बातें प्रेडिक्ट की थी, वही कागज ढूंढ रही थी। हालांकि मुझे इन सब बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं, लेकिन पिछले दिनों जीवन में तेजी से जो परिवर्तन आए हैं, उन्होंने अचानक ही उन भविष्यवाणियों की याद दिला दी। और मैं वही कागज ढूंढ रही थी जिसमें तमाम प्रेडिक्शंस लिखे हैं। मन किया और देखें क्या क्या लिखा है आगे के बारे में।
लाओ हाथ, हम बताते हैं क्या लिखा है।
हाय सच्ची, तुम्हें आता है देखना? कहते उसने झपक कर हाथ सामने रख दिया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे अपने करीब और करीब किया और हौले से उस पर अपने होंठ रख दिए। दत्त! बसु ने हाथ खींच लिया और फिर से शीशे के सामने जा खड़ी हुई। सांवले रंग में फिर वही तांबा चिलकने लगा था। उसके अक्स की शर्माई शर्माई आंखें जैसे मुझ पर कुर्बान हुई जाती थीं। मैं उठा, शीशे में उसका अक्स देखता रहा। क्या देख रहे हो यूं? दो पल चुपचाप यहीं खड़े रहो, बगैर हिले डुले। इस बीच में तेजी से पलटा और उसके रंगों के पैलेट से सुर्ख रंग में ब्रश भिगोकर दोबारा शीशे तक आया। वो वैसी ही खड़ी थी। अब मैंने उसके चौड़े सूने माथे के अक्स के बीचों बीच एक बड़ी सी बिंदी लगा दी। अब देखो कितनी सुंदर लग रही हो। खोई खोई बसु अपने माथे पर बिंदिया के भरम को मुग्ध भाव से देखती रही। फिर शीशे में ही हम दोनों की आंखें मिली। मैं फुसफुसाया, हाँ बसु। बसु तेजी से मेरी तरफ बढ़ी, कस कर दोनों बाहों में इस तरह जकड़ लिया जैसे मुझे झिंझोड़ना चाहती हो, लेकिन मेरी आंखों में देखते देखते उसकी पकड़ ढीली होती चली गई। और फिर वो मुझसे लिपट कर सुबह उठी। शीशे वाली बिंदी चुपके से कब उसके माथे पर आ गई और उसका रंग कैसे गाढ़ा होता गया, खबर ही ना पड़ी। बसु के श्यामल रंग से जैसे सैकड़ों रंग फूट पड़ते थे। रंगों ब्रशों से बसु प्रकृति को कैनवस पर उतारती रहती, लेकिन मुझे लगता वो सारे रंग उसमें ही समा जाते हैं और अवसर पाते ही जिन्हें मैं चुरा लेता हूँ। उसकी बिंदी के सुर्ख रंग में उस रोज कुछ गाढ़ापन और शामिल हो गया था जब उसने मेरे बेटे को जन्म दिया। सूने माथे से लेकर रंग के गढ़ियाने तक की यात्रा का हर पल मेरे भीतर नक्श था। अब पेंटिंग के लिए निकलते हुए उसके साथ रंगों ब्रशों और कैनवस के अलावा विश्व भी होता जिसे नन्ही सी डलिया में वो अपने साथ साथ लिए फिरती। आप सुन रहे हैं डॉक्टर अचला नागर द्वारा लिखी कहानी कलर थेरेपी। एक रोज मैं शेव कर रहा था और बसु विशु को अपना दूध पिला रही थी। अनायास ही वो बड़ी जोर से चीखी, इतना जोर से कि डरकर विशु हाथ पांव फेंक कर रोने लगा। क्या हुआ? मैं सकपकाया। वो अस्त व्यस्त मुद्रा में दीवार से सिर टिकाए आंखें मुंदे बैठी थी। रोते हुए विशु को कंधे से लगाकर मैं चुप कराने लगा। कुछ देर में बसु ने आंखें खोली और विशु को लेने के लिए बाहें फैलाई। तुम्हें क्या हो गया था अचानक?
पता नहीं, दर्द सा उठा था यहाँ, अब ठीक है।
अपने सीने पर एक जगह हाथ रखते हुए उसने बताया। तुम आराम करो, इसे मैं सुला देता हूँ। उसके बाद इसी तरह जब एक दो बार बसु ने दर्द की शिकायत की तो मैं जबरदस्ती उसे डॉक्टर के पास ले गया। उस रोज जो डॉक्टर की देहरी लांगी तो बस ये सिलसिला शुरू ही हो गया। डॉक्टर्स ने एक मत होकर ब्रेस्ट कैंसर का निदान किया। विशु को मां का दूध मना कर दिया गया। वो तो बिलखता ही, मगर उससे ज्यादा रोती बसु। विशु मुंह में फीडिंग बोतल का निप्पल ही नहीं लेता था। जबरन डालो तो उल्टी कर देता था। हार कर कटोरी चम्मच का सहारा लेना पड़ा, जो अपने आप में पूरा शेर के शिकार वाला हाका होता। रोते रोते वह सांस खींच लेता, कभी हल्के से उसकी नाक बंद करके बसु दूध हलक में रेंड देती। ऐसे में अगर मैं कुछ बोल देता तो सारा गुस्सा मुझी पर उतरता। एक माँ की मजबूरी जब चमकीली सतह बनकर उसकी आंखों पर घिर आती तो वहां से उठ जाने के अलावा मुझसे कुछ नहीं होता। डॉक्टर दर डॉक्टर, इलाज दर इलाज, मैं घबरा गया था, लेकिन बसु नहीं। इतने पास से शायद पहली बार मैंने जिजी विशा को देखा था। बसु किसी भी सूरत में जीना चाहती थी। डॉक्टर एक मत हो चुके थे, ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद एक बार को लगा बसु जीत जाएगी, रोग हार जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस तरह जड़ से काट दिए जाने वाले पेड़ के आसपास लंबे समय के बाद भी कुछ पत्तियां सिर उठाए अपने अस्तित्व का प्रमाण देने लगती हैं, उसी तरह कोई 3 साल बाद बसु के दूसरे वक्ष में रोग के लक्षण प्रकट हुए। मैं अंदर तक हिल गया। हालांकि पहले ऑपरेशन के बाद ऊपर से स्वस्थ और खुश दिखने की कोशिश के बावजूद हम दोनों को ही लगता था हमारे पांव तले की मिट्टी कुछ सरक गई है। अंतरंग क्षणों में दो जिस्मों के बीच मुझे कोई भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। हालांकि इसके लिए बड़ी मुश्किल से ही बसु का संकोच तोड़ा जा सकता था। लेकिन अब जैसे ही मैं उसे अनावृत करना चाहता, वीनस की खंडित मूर्ति मुझे याद हो आती और मैं ठिठक जाता। एक सहज भाव के इस तरह आने और जाने के बीच मानो मेरे उन्माद को लगाम लग जाती और अंधेरे में बसु की सांसों की आवाज में लंबा अंतराल ये भी स्पष्ट कर देता कि वह सब समझती है। लेकिन हम पहले से भी अधिक जुड़ गए थे, शायद इसलिए कि मन में ये ख्याल पक चुका था, इस संबंध की उम्र अब अधिक नहीं। डॉक्टरों से दूसरे ऑपरेशन का विकल्प सुनते ही लगा जैसे तीर चलाने के पहले ही कमान हाथ से फिसल रहा हो। दूसरा ऑपरेशन, और फिर उन चोर जड़ों का क्या होगा जो समय के घास फूस से सच्चाई के गढ़े को झुठला कर सामने आ खड़ी होती हैं। मेरे अंदर ये सब चलता था, लेकिन बसु के भीतर क्या चलता था वो उसके चेहरे पर कभी नहीं आया। एक दिन कहीं बाहर से आई तो हाथ में बड़े बड़े पैकेट थे, बोली सफेद साड़ियां और चादरें वगैरह हैं। पैकेट खोलते खोलते उसने बताया, एक ज्योतिषी ने उससे कहा है ये बीमारी ही बस जीवन का अंतिम कष्ट है। फिर तो इतना अच्छा समय आने वाला है कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि बस उस सफेद कपड़े ही पहना करो, सफेद बिस्तर हो, सब सफेद। कुछ भी कहकर मैंने उसका उत्साह तो भंग नहीं किया, मगर लाल पीले हरे गुलाबी कपड़ों में सवरी अपनी बसु की कल्पना मुझसे सफेद वस्त्रों में नहीं होती थी। जब जब वो सफेद कपड़ों में सामने होती, जी चाहता उस ज्योतिषी को कोई मोटी सी गाली देकर कहूं, साले मेरे रंग चुरा लिए हैं तूने। लेकिन इस सोच को मैंने बसु के कारण वाणी कभी ना दी। इन दिनों वो बड़ी मगन रहती थी, फाइनल ईयर के उस छात्र की तरह जो हमेशा फर्स्ट आता हो और इम्तिहान में फेल होने का विचार उसे कभी छू भी न गया हो। साथ ही ये भी कि इस इम्तिहान के बाद इम्तिहानों का ये सिलसिला भी समाप्त हो जाएगा। वो घर के लिए ढेरों शॉपिंग करती, विशु के लिए कपड़े, खिलौने, नौकरानी को हिदायतें। जब मेरे पुलोवर के लिए उसने ऊन हाथ में ले लिया तो मैंने टोका, अरे भाई बंबई में पुलोवर की सर्दी पड़ती कहाँ है।
तो क्या हुआ, सितंबर में कश्मीर चलेंगे पुलोवर पहनने के लिए।
मैं उसे देखता ही रह गया। ये सब हो रहा था लेकिन मैं बुरी तरह डरा हुआ था। लगता खुशियां मुखौटे लगाकर मुझे छल रही हैं। रात के अंधेरों में उन्हें छूकर भी तसल्ली करना चाहता था, मगर खनकती हंसी का न रुकने वाला क्रम जैसे मेरे शीशे के वहम पर पत्थर मार देता था। डॉक्टरों के साथ ज्योतिषियों फकीरों का चक्कर भी बढ़ रहा था। दवा की शीशियों के साथ ही तांबे, लोहे के छल्ले, ताबीज, अंगूठी के रत्न और सफेद कपड़े तो थे ही। लगता रंग जिंदगी की हद से बहुत दूर जा पड़े हैं, मगर बसु है कि अपने हाथ बढ़ा बढ़ा कर उन्हें खींच लाने की कोशिश किए जा रही है। एक बार उसकी अलमारी से किसी गहरे रंग की साड़ी निकालकर मैंने उसके हाथों में थमा दी। ये पहन लो आज। बसु सहम गई।
नहीं मनु, एक दिन की चूक से कलर थेरेपी का सारा असर जाता रहेगा, बस थोड़े ही दिनों की तो बात है।
ऑपरेशन का दिन भी आ ही गया। पहले ऑपरेशन के वक्त बसु घबराई हुई थी और मैं उसे समझाता था। इस बार बात उलट गई थी, वो मुझे समझाती और मैं सन्नाटे में था। पिछला ऑपरेशन कोई 1.5 घंटे में हो गया था। मैं घड़ी पर आंखें टिकाए था, सुइयां आगे भाग रही थी। अचानक ऑपरेशन थिएटर की आवाजाही भी भागने लगी, हलचल, ऑक्सीजन भीतर जा रही थी। मैं घबराया, नर्स क्या बात है? वो रुकी नहीं। बगल से एक जूनियर डॉक्टर निकली। कैसी है बसु डॉक्टर? पल भर को वो देखती रही। शी इज सीरियस, डिजीज बहुत फैल चुकी है। ओह, मैं सिर पकड़कर बैठ गया, बैठा रहा। घड़ी की तरफ देखने का साहस भी मुझ में नहीं था। सॉरी मिस्टर वर्मा, मैं डॉक्टर को आंखें फाड़े देख रहा था, जो अपने औपचारिक संवादों से मुझे तसल्ली देकर जा चुके थे। तभी ऑपरेशन थिएटर के भीतर से सफेद चादर से ढका स्ट्रेचर निकला। शायद कलर थेरेपी समाप्त हो चुकी थी। आप सुन रहे थे डॉक्टर अचला नागर द्वारा लिखी कहानी कलर थेरेपी। वाचन था निधि बासु का।
Here's to an endless summer. Plato's Closet pays you cash for clothes, so you have endless possibilities for more summer adventures. Done with that top? Sell it. Are those sandals just not your thing anymore? Sell them. Plato's Closet pays you cash on the spot for your gently used clothing, shoes, and accessories for guys and girls in their teens and 20s. If you want summer fun, get cash for clothes at Plato's Closet. Plato's Closet is now hiring. Find us in Fairfax in the Greenbrier Shopping Center and in Manassas at the Shops at Signal Hill.